ओम शांति। बाबा को कौन सी आत्माएं सबसे ज्यादा प्रिय हैं? योगी और बोलो पवित्र आत्माएं। ऐसा देखा कि बहुत भोली कोई कन्या जिसको ज्ञान ध्यान भी ज्यादा नहीं लेकिन बहुत पवित्र बाबा को आकर्षित करती थी। बाबा हमारा चार्ट भी वही चेक करते हैं, याद है ना, संडे की मुरली चक्र लगाते हैं बाबा और सबका चार्ट चेक करते हैं। तो सभी ने अपना चार्ट भी चेक किया या बाबा ने ही हमारा किया? जब बाबा हमारा चार्ट चेक करे तो हम भी तो अपना चार्ट चेक करें, कहाँ पहुंचे हैं हम, क्योंकि समय तो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या नहीं? एक न्यूज सुन रहे हैं, उसमें कितना दम है ये तो देखेंगे आगे चल के। आप में से भी कईयों ने सुनी होगी, वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है। पहले तो ज्योतिष ही करते थे, अब वैज्ञानिक करते हैं, उनकी भी झूठी हो जाती है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी वो बात कही है। नासा अमेरिका में वैज्ञानिकों का एक बड़ा केंद्र है, तो कहा है कि 15 नवंबर से 15 दिन धरती पर अंधेरा रहेगा, सूरज नहीं दिखाई देगा, अंधकार रहेगा, ब्लैकआउट का है इसको, नवंबर ब्लैकआउट। अबे कितना होता है कुछ अभी तो समझ से परे की चीज है, पर अचानक क्या होता है वो तो देखेंगे आगे चल के। लगता तो नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, पर वैज्ञानिक कह रहे हैं तो लोग ज्यादा सोचते हैं ना। तो दो ग्रह और ग्रहों के कारण बताया था, बृहस्पति और एक दूसरा कौन सा, मंगल। मंगल और बृहस्पति के कारण शायद ये सूरज के आगे आ जाएंगे दोनों, तो ढक जाएगा। कुछ भी हो, हम जानते हैं समय दिनों दिन बदलेगा। कलयुग समाप्ति की ओर तो है ही, चक्र पूर्ण होना है और तेजी से संसार में गिरावट भी देखने में आ रही है। तो बाबा चाहता है मेरे बच्चे सभी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएं। उस स्थिति में एक स्थिति हमारी प्योरिटी भी है। थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा इसके बारे में कुछ। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात सोचो, संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता, और सोचो आगे आ जाओ भी आगे जगह इधर आ जाओ, और सोचो सोचो माया के सभी जो विकार हैं, सूक्ष्म भी और पांच बड़े भी, सब पर विजय। और सोचो साकार मुरलियों में बाबा की ये डेफिनेशन आई है, बुद्धि एक के सिवाय कहीं भी न जाए, ये है बेहद की पवित्रता। बाबा साकार में ये शब्द बहुत बोलते थे ना, बेहद, ये बेहद की पवित्रता है। और अव्यक्त मुरली की एक बहुत सुंदर परिभाषा है इसकी, इन सब को हमें अपना लक्ष्य बनाना है। वो क्या है? संपूर्ण प्योरिटी का अर्थ केवल ये नहीं कि हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो गए, केवल इतना नहीं, साधारण संकल्पों से भी दूर, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित। यह है संपूर्ण प्योरिटी। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ। अगर हमारे मन में दूसरों के लिए बदले की भावना है, तो क्या इसे संपूर्ण प्योरिटी कहेंगे? अगर हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष है, कहेंगे नहीं। अगर हम पर चिंतन और प्रदर्शन में ज्यादा रहते हैं, कहेंगे इसको प्योरिटी। मान लो किसी का ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा हो, उसने दूसरे को छुआ भी ना हो जीवन में, लेकिन अगर पदार्थों में आसक्ति बहुत है, तो इसको भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। किसी भी कर्मेंद्री का रस अपवित्रता है। तो एक बड़ी परिभाषा हो जाती है संपूर्ण प्योरिटी की। और हम सबको ध्यान रखना है, एक समय था बाबा की प्योरिटी पर बहुत मुरलियां चली हैं, कम से कम 10-12 तो बहुत गहरी मुरली हैं, बहुत समय पहले, जिसमें बाबा ने प्योरिटी का महत्व हमें याद दिलाया है। क्योंकि किसी भी चीज का जब महत्व हमारे पास होता है, तो हम उसको ज्यादा ध्यान से करते हैं। डॉक्टर कह दे कि भाई ये बीमारी बहुत सीरियस है, अब ये गोली खानी होगी, 50,000 की एक गोली है, हफ्ते में एक खानी पड़ेगी, जिंदा रहना है तो। क्या करते हैं लोग, खाते हैं ना, या सोचते हैं मरना भला क्यों इतना खर्च करें, सोचता है कोई, करते हैं ना। हमारी प्योरिटी संसार के लिए वरदान है। एक पवित्र आत्मा जहां भी होती है, उसके आसपास की अनेक आत्माएं सुरक्षित हो जाती हैं। मैंने यहाँ एक बात कई बार सुनाई है क्लास में, आप सब भी सुन लें। वैज्ञानिकों को एक लक्ष्य दिया गया था, मैं बिल्कुल सीधी भाषा में बताता हूँ, सब माताओं को भी जो बिना पढ़ी लिखी उनको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सभी माताएं पीछे पीछे रहती हैं। पीछे रहना है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो, माताओं यहाँ आ जाओ, अरे इधर भी कुर्सियां हैं, कुर्सी चाहिए तो। माताएं शायद भाषा नहीं समझती, आ जाओ। लक्ष्य दिया गया था, ध्यान से सुनना, आपको समझाने में बहुत काम आएगा। क्या कारण है जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, तो जो संसार में पवित्र स्थान है वो सुरक्षित रहते हैं। आपने देखा हो, उधर भी देखा, नेपाल में केदारनाथ में देखा, वो पत्थर आके रुक गया, उससे पानी दो हिस्सों में बट गया, मंदिर सुरक्षित रह गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब सुरक्षित रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके बात दी बहुत सुंदर है, और वो है तो हमारी, लेकिन वैज्ञानिकों के पास भी वाइब्रेशंस को नोट करने के यंत्र हैं। विशेषकर रशिया के वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र बनाए हैं जो कहीं के भी वाइब्रेशंस उस पर आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया, क्योंकि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगे फैलती हैं, ये पवित्र तरंगे विनाश की तरंगों को रोक देती हैं। अब आप सोचो, मंदिरों की पवित्रता और हमारी पवित्रता किसकी महान है, बोलो। उत्तर आ नहीं रहा भाई, चुप हैं। माताएं क्या कहेंगी, हैं? सच है या झूठ झूठ, किसकी पवित्रता महान, हाथ उठाओ। जिनकी मूर्तियों के कारण मंदिरों का महत्व है, वो सब कहां बैठे हैं, बैठे हैं? सच देख लो, भक्तों को पता न लग जाए, सारा दूध आपके ऊपर ही चढ़ा देंगे फिर। तो विनाश काल में ये बहुत अनुभव होंगे, बहुत अच्छी पवित्र आत्मा जहां होगी, चाहे वो एक हो, उसके दूर दूर तक भी विनाश ठंडा रहेगा। धरती फटती आ रही हो, रुक जाएगी, और मधुबन में तो कितनी पवित्र आत्माएं हैं, ऐसे तो सभी हैं, पर कुछ आत्माएं बहुत पवित्र हैं, जिनके लिए कहा जाएगा पवित्रता का बल है उनके पास। पवित्र होना एक बात, इम्पोर्टेंट बात है पवित्रता का बल होना। तो ये जो बाबा के स्थान हैं, इनका विनाश नहीं होगा, सुरक्षित हो जाएंगे सब आसपास के लोग भी। तो हमें ये याद रखना है, प्योरिटी ही हमारे जीवन की ब्यूटी है, प्योरिटी ही हमारी रॉयल्टी है। अब आगे आप बोलेंगे प्योरिटी ही पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही बोलो सिंप्लिसिटी है, ठीक बोला, प्योरिटी ही रियलिटी है, डिविनिटी है, यही सबसे बड़ी ऑनेस्टी भी है, सेफ्टी भी है, महानता भी है, पब्लिसिटी भी है, पूजनीय बनने का आधार भी यही है। मुझे बाबा की जब इन्होंने ये शब्द बोला तो एक बात याद आ गई जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, कुछ साल पहले की है। तुम्हारी पवित्रता जो पूजनीय बनने का आधार है, देखो उसको, जब तुम परमधाम में हो आत्मा, तो क्या है, नहीं कुछ और, तुम्हारी चमक दूसरी आत्माओं की चमक से बहुत ज्यादा है। जैसे तारे देखो आसमान में, कोई बहुत चमकता है ना, परमधाम में आत्माएं तो सब हैं, लेकिन सबका जो प्रकाश है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं आत्मा ऐसे मिली मिली बैठी होंगी, बिंदी हैं, एक आत्मा की लाइट जहां तक फैल रही है उसके बाद ही दूसरी आत्मा होगी। जैसे यहाँ ऊपर जो तारे हमें समीप समीप दिख रहे हैं, वे समीप नहीं हैं। एक तारे का गुरुत्वाकर्षण फोर्स जहां तक फैला हुआ है उसके बाद ही दूसरा तारा होगा, उससे पहले नहीं, नहीं तो टकरा जाएंगे दोनों। ऐसे ही आत्माएं भी, हम जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी चमक परमधाम में भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात वो बाबा के उतने ही समीप हैं। बहुत बड़ी चीज है, यानी सिंहासन उनका बाबा के समीप हो गया। और एक बहुत अच्छी बात कही, बाबा के दिल पर बैठने का आधार भी प्योरिटी ही है। फिर कहा सतयुग में देखो, तुम सतयुग में तुम्हारे चेहरों का तेज, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल के हमारे चेहरे, सबको पता है ना हमारे चेहरे कैसे हैं, रोज अपना भी देखते हैं और दूसरों का भी, कैसे हैं सबके चेहरे, किसी के दांत चले गए, आंखों पे चश्मे चढ़ गए, कानों में वो लग गई आजकल सुनने वाली, सतयुगी जो हमारे शरीर होंगे उसका तो हम चित्र भी नहीं बना सकते, सच बात है या नहीं। बहुत तेजस्वी शरीर चेहरे, आत्मा तो है ही, और धन धान्य तो इतना है कि जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है, हम सोच भी नहीं सकते कितना होगा। कभी बाबा ने कहा साकार में, जिन्होंने मुरली ध्यान से सुनते हैं उनको याद आ जाएगा, जितनी सारी बॉम्बे की संपत्ति है उतने का तो तुम्हारे महल में एक हीरा लगा होगा, कर सकते हैं कल्पना। तब बॉम्बे छोटा था, इतना नहीं, अब से दसवां हिस्सा समझ लो नरोत्तम भाई, जितनी सारी मुंबई की धन संपदा उतना तुम्हारे महल में एक हीरा। तो क्या क्या हमारे पास होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और एक गुह्य रहस्य की ओर मैं आप सबको ले चलता हूँ, ध्यान से सुन लेना, आपको कई रहस्य इस सृष्टि के समझ में आ जाएंगे। सतयुग में क्यों धन धान भरपूर है और कलयुग में क्यों नहीं है, इसका मुख्य आधार पवित्रता है। देखो क्या होता है, सतयुग में प्रकृति भी सतो प्रधान, आत्मा भी संपूर्ण पावन। आत्मा के जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो प्रकृति में जाएंगे, आत्मा के वाइब्रेशंस और प्रकृति के बीच हमेशा रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया मिलन है दोनों का, और वही चीज ये प्रकृति वापिस दे देती है। तो सतयुग में जो कुछ हमारे पास है धरती में आकाश में चारों ओर प्रकृति में, उस सब का कारण हमारी प्योरिटी है। दूसरा भी कारण है यद्यपि शक्तियां भी, प्योरिटी एंड पावर दो के कारण प्रकृति सब कुछ प्रदान करती है, और क्योंकि आजकल वो नहीं है तो प्रकृति प्रदान नहीं कर रही है। और जो लोग बहुत साहूकार हमें दिखाई देते हैं वो कौन है? ठीक बोला आपने, बोलो कौन है वो, जो अभी अभी आई है एक दो जन्म वाले हैं, क्योंकि उनके पास प्योरिटी थोड़ी रहती है, भाग्य लेकर उतरे हैं। तो हमारी प्योरिटी देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करती है, बाबा ने ये बता दिया है। सन्यासियों के लिए बाबा कहते थे जो सन्यासी जितना पवित्र उसके उतने ही ज्यादा शिष्य, और यहां भी जो निमित्तात्माएं जितनी ज्यादा पवित्र उनकी सेवाएं उतनी ही सुंदर, केवल ज्यादा नहीं सुंदर, निर्विघन शक्तिशाली आत्माएं वारिस आत्माएं निकलती जाएंगी। हमारी प्योरिटी देवकुल की पवित्र आत्माओं को आकर्षित करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, सभी ध्यान दें, देवकुल की आत्माओं को बाबा के पास आना ही है, उन्हें को रोक नहीं सकेगा। हम संदेश देने की बहुत मेहनत करते आ रहे हैं कितने सालों से, थोड़ी थोड़ी आत्माएं आ रही हैं। जैसे जैसे हमारी प्योरिटी बढ़ेगी इन देवकुल की आत्माओं को आकर्षण होगा। अब देखो हमारे सभी सेंटर्स पे कोर्स करने वालों की संख्या कितनी हो गई होगी छोटे लाल भाई? कई करोड़ हो गई होगी या नहीं? कई करोड़। ज्ञान छोड़कर जाने वालों की संख्या भी उतनी ही जितने हैं। अगर 10 लाख ब्राह्मण हैं तो 10 लाख गए हुए ब्राह्मण हैं, वो सब एक झटका लगते हैं वापिस। तो जैसे जैसे हमारी प्योरिटी बढ़ेगी ये आत्माएं खींच खींच कर आएंगी। प्योरिटी ही प्रकृतिक प्रकोप का भी कारण है। सुन लें आप बाबा का यह अति सुंदर गुह्य महावाक्य, जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। नेचुरल कैलेमिटीज माना माताएं बताओ, प्राकृतिक प्रकोप। बोलो माताएं नेचुरल कैलेमिटीज, अरे नहीं अंग्रेजी बोलो ना, सीखो बोलो, ये माता बोलेगी सबसे आगे पहले आके बैठी, नहीं आती अंग्रेजी, बाबा अंग्रेजी सिखाता है ना। शुरू में बड़े हंसते थे, माताजी डायरी पेन लेकर जा रही हैं, बच्चे पूरे कहाँ चली सवेरे सवेरे, गौडली यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। तो जैसे जैसे हमारी प्योरिटी नेचुरल होगी वैसे वैसे नेचुरल कैलिमिटीज होंगी, प्राकृतिक आपदाएं प्रकोप होंगे। क्यों होंगे? हमारे प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। अब आप देखो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे प्योर वाइब्रेशंस धरती में जा रहे हैं, ऑटोमेटिक है ये, कुछ करना नहीं हमें। जितने प्योर हम हैं वो वाइब्रेशंस धरती में जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, आकाश में फैल रहे हैं। जितने जितने ये वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे तो प्रकृति में है अपवित्र तरंगे, तो ये पवित्र वाइब्रेशंस उनको जैसे कोई धक्का देके बाहर फेंके ना, तो ये पवित्र वाइब्रेशंस उनको बाहर फेंकेंगे और इससे होंगे विस्फोट। इसलिए हमें, और विस्फोट जरूरी है। सतयुग का सारा माल कहाँ है? नीचे बहुत है, नीचे सागर में भी और नीचे भी। उसको ऊपर लाना है या नहीं लाना है? काम के तो है ना हमारे वो सब माल, तो वो ऊपर आएगा, कारण बनेगी हमारी प्योरिटी। इसलिए पवित्रता के बल से हम धर्म स्थापित कर रहे हैं, और योग के बल से, मैं थोड़ा माताओं को जगाना चाहता हूँ, ये ठंडी हैं, इसलिए मैं आगे बुलाता हूँ पर ये आते नहीं हैं। बोलो पीछे की माताएं खड़े होकर उत्तर दो, योग के बल से क्या स्थापित हो रहा है और पवित्रता के बल से क्या? नहीं पता, माताओं को आता ही नहीं ना बेचारी, भोली माताएं। बोलो, रोज बोलता है बाबा, तुम अपने तन मन धन से योग बल के द्वारा क्या स्थापित कर रहे हो? दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो। तो पवित्रता से होती है धर्म की स्थापना, और योग बल से होती है राज्य की स्थापना, और योग अग्नि से ही विनाश ज्वाला भी प्रकट होती है। तो ये दो शक्ति हमारे पास हो गई, प्योरिटी की और योग की। है माताओं में शक्ति या नहीं? अगर मोह है तो प्योरिटी का बल मिलेगा? बोलो माताएं उत्तर दो, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्योरिटी की सारी शक्ति मोह में खत्म होती रहेगी, इसलिए वो शक्ति काम आए संसार के वो नहीं होगा। किसी में क्रोध है, किसी में अभिमान है, पदार्थों का बहुत लालच है, ये भी सब अपवित्रता है। तो हम सभी लक्ष्य बनाएं, हमें अपनी पावर ऑफ प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है। अगर हमारे संकल्प बहुत चलते हैं, अगर दैहिक दृष्टि रहती है, देह की ओर ध्यान ज्यादा जाते हैं, तो क्या नुकसान होता है? हमारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। अब मैं कुछ समाधान पर आ जाता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात जो सबको जाननी है, आज एक हमारे ग्रुप से यान सरोवर में हमने चर्चा की, उन्होंने कहा कि प्योरिटी पर मुरली चली है, इस पर हमें चर्चा करनी है। एक गहरी बात भी हमें जाननी चाहिए। कईयों को प्योरिटी बहुत इजी लगती है तो कईयों को भारी लगती है, कुमार कुमारियों को भी। इसका एक कारण ये भी है कि अगर किसी के माँ बाप बहुत विषयी हैं, बहुत विशेष रहे हैं, तो बच्चों के देह में वासनाएं ज्यादा रहती हैं। छोटी आयु से ही 5-7 साल के बच्चे होंगे, देह में वासनाओं का प्रकोप रहेगा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। हम सभी, तन तो हम सब का भी पवित्र है ना, हम सभी तन को भी प्योर वाइब्रेशंस दिया करें, और उसकी विधि मैं आत्मा परम पवित्र, और मुझसे जो प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वो मेरे ब्रेन में और पूरे शरीर में जा रहे हैं। ये अभ्यास सबको करना ही है, थोड़ा थोड़ा भी, एक एक मिनट भी करें 2-4 बार, इससे देह की इम्प्योरिटी समाप्त होती जाएगी, देह के आकर्षण समाप्त होते जाएंगे, और अशरीरी बनने में मदद मिलने लगेगी, सहज होने लगेगा, नेचुरल अतिंद्रिय सुख की भासना आने लगेगी। सभी को ये बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, इन वासनाओं को दबाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इनको समाप्त किया जाएगा कैसे? योग बल से, स्वमन से। पवित्र भोजन से, ज्ञान के बल से, चार चीजें ले ले हम, ज्ञान का भी तो बल है ना हमारे पास, पवित्र भोजन का बल बहुत जरूरी, योग बल, स्वमान का बल, चारों चीजों पर हमें ध्यान देना है। और मैं एक बात बहुत सबको बताता आता हूँ, सबको ध्यान देना चाहिए, अगर योग का चार चार घंटे रोज नहीं है तो इन वासनाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, युद्ध चलता रहेगा मन में और पवित्रता का सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या है स्लोगन, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र आत्मा बहुत सुखी होगी, अगर कोई पवित्र आत्मा दुखी है, अशांत है, डिस्टर्ब रहती है, परेशान रहती है, खुश नहीं रहती, तो समझ लें प्योरिटी का बल नहीं है। प्योरिटी की बहुत प्रैक्टिकल निशानी खुशी, हैप्पीनेस, चेहरों पर चमक, जो हमारे यहाँ देखने में आती है सबको। मुझे याद है जब मधुवन छोटा सा था, योग शिविर शुरू कराया था निर्वैर भाई ने, बहुत पहले शुरू कराया था 73 के आसपास, ये योग भवन बना था जो नीचे है ना बिल्डिंग, किसी ने आबू वाले ने जमीन दी थी वो, तो उसपे ये भवन बना योग भवन, और निर्वैर भाई का संकल्प था कि इसमें योग शिविर चालू किया जाए। पहले शिविर में 30 लोग आए थे, कभी 20 आते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ी। चंद्रिका मैन ने अहमदाबाद में किया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 60 लोग आए, 30 ज्ञान में चलने लगे, बड़ी उमंग हुई शिविर करने की। तो एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी आया, तब तो थोड़े होते थे ना, तो कुछ लोग आके क्लास में अनुभव सुनाते थे, तो उसने अनुभव सुनाया कि मैंने 7 दिन का कोर्स लिया, अहमदाबाद से आया था, मुझे बताया गया कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास ब्रह्मचर्य की पालना होती है। हमारे मनोविज्ञान में सिद्धांत है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा तनाव होगा, दबाई है उसने अपनी वासनाओं को। तो कहा, मैंने सोचा कि मैं आबू जाऊंगा और देखूंगा, या तो ये झूठ बोलते हैं या इनके चेहरों पे खिंचाव होगा। कहा, मैं यहाँ आया, आते ही देखा सब मुस्कुरा रहे हैं। कहा, मैं तो सोचने लगा ये मनोविज्ञान झूठा या ये सच्चे, क्या हाल है यहाँ। मनोविज्ञान में पवित्रता को स्वीकार नहीं किया जाता, उनकी अलग थ्योरी है। अब वो मनुष्यों की थ्योरी, मनुष्यों की थ्योरी संपूर्ण सत्य होती है? बिल्कुल नहीं। मैं तो सीधा कहता हूँ, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आते हैं प्रोफेसर, मैं कहा तुम्हारी ये सारी किताबें किसने लिखी है? मनुष्यों ने, जिनको कुछ नहीं आता। मैं तो साफ कहता हूँ, जिनको पता ही नहीं आत्मा क्या है, प्योरिटी क्या है, वो क्या सत्य तुम्हें बताएंगे, सब झूठ लिख दिया है। इसलिए डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लाखों छपी हुई हैं डिप्रेशन पे, कोई दवाई नहीं है। तो कहा उसने, मैंने देखा सब मुस्कुरा रहे हैं, किसी के चेहरे पे भी सलवटे नहीं है यहाँ। तो फिर तो ज्ञान लिया, 3 दिन 4 दिन रहा, सबसे बातचीत की, उसको पता चल गया यहाँ तो प्योरिटी है, ये झूठा प्रचार नहीं है, ये सत्य है। तब उसने कहा, अब मैं जाकर रिसर्च करूंगा और सिद्ध करूंगा कि फ्रायड ने जो कुछ लिखा है वो झूठा है, वो गलत है। अब तो मनोविज्ञान के बहुत प्रोफेसर ज्ञान में हैं। तो प्योरिटी चेहरे पे तनाव नहीं, मुस्कुराहट लाती है, सभी समस्याओं का निदान है इसमें समाया हुआ। और आप देख सकते हैं, बड़े रूप से देख लो, जहां भी घन जादे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे परिवार हो, चाहे सेवा केंद्र हो, जहां भी घन जादे हैं वहां कहीं ना कहीं सूक्ष्म अपवित्रता काम कर रही है, मोटी हो या ना हो, सूक्ष्म। इसलिए प्योरिटी ही हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाती है। हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाते चलें, चार घंटे होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी प्योरिटी कितनी रह जाएगी? बोलो। बाबा ने कहा जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं होंगी अष्ट रतन, वो होंगी जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। और एक आत्मा बिल्कुल थोड़ी पवित्र है, ब्रह्मचर्य तो अपना लिया, वो होंगे 5, 7, 10, 15 वाट के बल्ब। जीरो का भी होता है ना, घर कमरे में 0 वाट का बल्ब जले तो अंधेरा तो नहीं होता ना, रोशनी तो रहती है। प्योरिटी तो है लेकिन प्रकाश यहीं तक फैलेगा, संसार में नहीं। मुझे एक और अच्छी बात याद आ गई, आबू का म्यूजियम बना 69 में, फरवरी से शुरू हुआ था, हम भी उसी में थे बनाने में। निर्वैर भाई बॉम्बे में रहते थे, वो बनाने आए थे। हम लोग जो युवक थे उन दिनों छोटे, उन सबको लगा दिया गया था, सारे काम करने होते थे। म्यूजियम बना, ओपनिंग करने के लिए अव्यक्त बाबा आए। तब की मुझे एक बात याद रहती है, तब हमें ये वाइब्रेशंस का और ये बहुत सारा लंबा चौड़ा ज्ञान तो नहीं था ना, जो अब है अव्यक्त बाबा ने दिया है। तो बाबा ने सारे म्यूजियम में घूम कर चक्कर लगाया और जब आकर बैठे तो कहा, म्यूजियम तो बहुत अच्छा बना है लेकिन चित्रों में अलौकिक आकर्षण नहीं है। मेरे को ये बात ध्यान में आई, गई अंदर कि चित्रों में अलौकिक आकर्षण और वो नहीं है, क्यों नहीं है, मेरा चिंतन प्रारंभ हुआ। बाबा से जब मुरली चली, छोटी मुरली होती थी, निर्वैर भाई ने पूछा कि बाबा बहुत सारे महारथी हैं, इनमें से अष्टरत्नों में कौन आएंगे? तब तो दादियां थी ना सब बड़ी बड़ी, बहुत दादियां थी जिनको आप जानते भी नहीं। तो बाबा का उत्तर था कि इसमें महारथी होने की बात नहीं, जिनकी प्योरिटी संपूर्ण हो जाएगी। प्योरिटी एक छोटे बच्चे की तरह, जिसको पवित्रता का ज्ञान ही नहीं है, वो अस्वतन होंगे। तो ये बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं। हम अपनी प्योरिटी के प्रकाश को बढ़ाते चलें और योग बल से इसमें जो और चीजें हैं ना निगेटिव, जिनकी चर्चाएं हमने की, केवल व्यर्थ संकल्प ही नहीं, केवल देह का आकर्षण ही नहीं, केवल बुरे संकल्प ही नहीं, ये सब बाल बच्चे उसके, ये सब हमारी शक्तियों को नष्ट करते हैं। एक बहुत अच्छी आत्मा अगर ईर्ष्या द्वेष में रहती है तो हम जानते हैं उसके जीवन में दिव्यता नहीं आएगी, उसके चेहरे पे रौनक नहीं होगी, चाहे वो 100 साल से क्यों न ज्ञान में हो, होगा ही नहीं, लगेगा पता नहीं इनका क्या खो गया है। इसलिए हर व्यर्थ से मुक्त, सभी सोच लें पर चिंतन तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, यह है, उसके लिए हम बाबा के पास नहीं आए हैं। और मैं भाइयों को खास ये बात कहता हूँ कि ये समय है जब अपने को धन के पीछे कहीं भी उलझाना नहीं चाहिए, क्योंकि धन भी बहुत बड़ी माया बनता जा रहा है। भगवान ने तो कह दिया धन माया नहीं है, पर मैं तो कहता हूँ धन ही बहुत बड़ी माया का बीज है। गरीब लोग तो बेचारे कई माया को जानते ही नहीं। आज मुझे एक बात देखकर बहुत ही, क्या कहूँ, आप सोच लेना कैसा लगा होगा, एक गरीब माता आई हमारे पास, वो ना भी ठीक करती थी, एक की कराई, 50 रुपए देने थे उसको, उसके पास थे नहीं। मुझे कहा खुले हैं क्या? मैंने देखा 100 रुपए ही हैं। मैंने कहा चलो मेरी भी ठीक कर दो, दोनों को 100 रुपए दे देंगे। उसने देखा 3 मिनट में, देखा जरा तेल लगा, देखो तुम्हारी यहाँ है टांग झटको, झटका तो ठीक हो गई। मैंने कहा लो माता जी 100 रुपए आपको। कहा नहीं भाई आपसे हम नहीं लेंगे। उनके लोग हमारे ज्ञान सरोवर में नौकरी करते हैं, नहीं सर्वेंट्स हैं सब, झाड़ू पोछा बर्तन आदि करने वाले। मैं सोचता ही रह गया कि ये गरीब माता जिसके लिए 100 रुपए बहुत बड़ी चीज है, वो कह रहे नहीं आपसे नहीं लेंगे। और मैंने कहा कोई डॉक्टर होता बड़ा, वो कहता 1000 फीस लगेगी, उससे कम में काम नहीं चलेगा। जितना पैसा बढ़ रहा है उतना लोभ बढ़ रहा है। मैंने कहा नहीं माता जी, आपको तो हम 150 देंगे। मैंने कहा आपकी दुआ बहुत अच्छी माता, स्वीट बूढ़ी, कईयों को ये गिफ्ट होती है हाथ को देन, वो करके ठीक ठीक कर देती है, कला नहीं पर उनको देन होती है ये। तो मैं सोच रहा था देखो गरीब लोग कितने चरित्रवान हैं और धनवान लोग, शब्द हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, यहाँ कोई धनवान बैठा होगा हमसे लड़ जाएगा। आज बाबा ने कहा कल भी कहा गरीब और बांधेली ही मुझे ज्यादा याद करते हैं, वही मुझे प्रिय हैं। तो हम सभी पवित्रता की शक्ति इतनी बढ़ाएंगे मधुबन वाले कि ये मधुबन बोलो लाइट हाउस और जादू की नगरी बन जाए। भगवान के महावाक्य वो तो होने ही है, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। बाबा ने कहा था गेट में लोग प्रवेश करेंगे कहीं कहाँ गए, क्या है यहाँ, साक्षात्कार होने लगेंगे। किसी को श्रीगण दिखाई देगा, किसी को हनुमान गदा लिए घूम रहा है दिखाई देगा। ये जो भाई है ना हमारे, वो हनुमान दिखाई देंगे गदाधारी, ये सब होने जा रहा। कोई शेर पे सवार भाग जाएंगे डर के, देखेंगे अभी ये बहन थी अभी शेर पे बैठी दुर्गा है, ये सब होने जा रहा है। लेकिन व्यर्थ से मुक्त, प्योरिटी की पावर से संपन्न और श्रेष्ठ योगी जीवन, एक दूसरे के गुड फ्रेंड, तो सभी बाबा की इस कामना को पूर्ण करेंगे। हम सभी अपने लिए ये शुभ भावना करें कि हमें संपूर्ण पवित्र बनकर बाबा के सबसे अधिक सहयोगी बनना है। देखिए धन का भी सहयोग है, तन का भी है, तन का सहयोग न मिले तो यज्ञ कैसे चले, धन का सहयोग भी जरूरी है, वो न मिले तो काम न चले। लेकिन प्योरिटी का, शुभ भावनाओं का, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का, योग बल का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। सभी अंतर्मुखी होकर आज से ही बहुत अच्छा चिंतन करेंगे इस सब्जेक्ट पर, और कोई भी कमी अपने अंदर है उसको हटाएंगे, घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये प्योरिटी की यात्रा लंबी यात्रा है। ऐसा नहीं 2-5 साल में पूरी हो जाए, इस पर लंबा सफर तय करना ही होता है। जो बाधाएं आती हैं, जो विकृति आती है, उनको पार करते आगे बढ़ते चलना है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। 1 मास के लिए मैं आप सबसे छुट्टी लूंगा क्योंकि मैं लंदन जा रहा हूं कल ही, और 25-26 दिन तो वहां, और फिर नीचे और यहाँ आने में 1 मास तो लग जाएगा, क्लास होगी फिर से। 25 दिन के पूरे ही प्रोग्राम बना दिए हैं उन्हें, मेरे से लोग पूछते हैं जब मैं आता हूँ, अभी भी गया था मलेशिया की तरफ सिंगापुर, पूछा क्या क्या देखा। तो मैं कहता हूँ मुझे तो कोई कोई दिखाता ही नहीं, थाईलैंड में इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी, मुझे बस एक छोटा सा मंदिर दिखा दिया, बाकी भट्टियां, एक एक दिन में 6-6 क्लासेज। तो 25 दिन के पूरे प्रोग्राम बन के मेरे पास आ गए हैं लिस्ट। सेवा तो बाबा के हाथ में होती है, जो भी वो कराए, हम लोग तो केवल उसकी कठपुतली हैं। ये सत्य है, कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल सत्य यही है कि बाबा अपनी शक्तियों से हमें निमित्त बनाकर अपने कार्य करता रहता है। हमें तो केवल करना होता है, कदम बढ़ाना होता है, हिम्मत रखनी होती है, बाकी पीछे से बैकबोन भी बाबा है और बुद्धि को टच करने वाला भी वही है। मैं तो क्लास कराने में ही देखता हूँ कि मैं तो कुछ सोच के नहीं जाता, आज भी कुछ सोच के नहीं आया था, खा पी के जब यहाँ आ गए तंदूरी रोटी, तो सोचा कल की मुरली पे ही क्लास कर लेते हैं। तो आप सभी बहुत आगे बढ़े, ऐसा प्योर वाइब्रेशंस बनाए, बाबा के ये महावाक्य हैं कि हमें देखकर बोलो दूसरे की भी इम्प्योरिटी नष्ट हो जाए। बाबा ने कहा था, तुम्हें देखकर यदि किसी में इम्प्योर फीलिंग होती है तो ये भी तुम्हारी कमजोरी है। कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। अपनी वाइब्रेशंस को इतने पावरफुल बना दो कि जो तुम्हें देखे उसका चित्त भी प्योर हो जाए। एक लास्ट संकल्प और दे देता हूँ। हमारे पास जो भी आत्माएं आती हैं कलयुग से निकलकर, हम संकल्प कर लें हमें इन्हें पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। उन्हें हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। हमसे उन्हें जरा भी इम्प्योर वाइब्रेशंस न जाएं, हम ये लक्ष्य रखेंगे, आत्मा देखेंगे, स्वमान में रहेंगे, तो हमसे प्योर एनर्जी उनको मिलती रहेगी। इस सेवा से दूसरों को भी फायदा और हमारी प्योरिटी भी बहुत बढ़ती जाती है। ओम।
Mom।